थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से हागै नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मंदिर का पुनर्निर्माण। श्रोताओं, हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हो, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
ऐसा गोताखोर नहीं जो नाप सके प्रभु की गहराई, ऐसा गिरियारोहक नहीं जो नाप सके प्रभु की ऊंचाई। जानते हैं फिर भी हम कोशिश करते हैं, जानते हैं फिर भी हम कोशिश करते हैं। कितनी लिख सकते हैं हम प्रभु तुम्हारी अच्छाई। ऐसा गोताखोर नहीं जो नाप सके प्रभु की गहराई।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सभी अपने प्रियों के साथ कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने परिवार और मित्रों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी श्रोता मित्रों का जो हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर अपने जीवन की उन आशीषों को हम तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद देता हूं उन श्रोताओं का जो पत्र के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से अपनी गवाहियां हम तक पहुंचाते हैं। मुझे आशा है कि आप भी इन वचनों के द्वारा अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं और आप भी हमें पत्र के द्वारा, फोन के द्वारा हमें उत्साहित करेंगे ताकि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। अपनी प्रार्थना निवेदनों को हम तक पहुंचाएंगे ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। मेरे मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों हगै की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को देख रहे हैं, क्योंकि इसराइलियों ने कहा कि अभी परमेश्वर के भवन को बनाने का समय नहीं है और आज हम में से कई लोग ऐसा ही सोचते हैं और अपने घरों को बनाते हैं परमेश्वर के भवन को बनाना छोड़ करके। तो इन पुस्तकों के द्वारा हम बहुत सी महत्वपूर्ण बातों को सीख रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से दूरदराज में बैठकर एक साथ आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। आज जब हम फिर से हगै नबी की पुस्तक में से सीखते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो अलग अलग स्थानों पर बैठकर आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब वे आपके वचन को सुने तो आपका वचन उनके हृदय में कार्य करने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए, उनकी आवश्यकताओं को उन्हें दर्शाने पाए, उनके पाप को उन्हें दिखाने पाए, ताकि वे अपने मनों को फिराकर आपकी ओर लौट आएं। हाँ पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि आप हम सब की सहायता करें। हमारी प्रार्थना है उन प्रिय भाई बहनों के लिए जो इस समय बीमार अवस्था में हैं, परेशान और चिंता में हैं, तनाव और दबाव में हैं। प्रभु जी, आप उनकी भी सुधि लीजिए, ताकि वे इस बात को जानने पाए कि आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि आपने उन्हें रचा है। आज के वचन के द्वारा आप उनसे बातचीत करें, चंगाई और छुटकारा दें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि हम सब हगई नबी की पुस्तक में देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसराइली परमेश्वर के भवन को बनाने का कार्य करते हैं, हमने देखा है कि बेबीलोन से लौटने वाले इसराइली कठिनाइयों के कारण हताश होकर मंदिर का पुनः निर्माण करना छोड़कर अपने अपने कामों में लग गए थे, परंतु परिस्थितियां उनके प्रतिकूल थी। अतः परमेश्वर ने उन्हें संदेश भेजकर आज्ञा दी कि वे मंदिर का निर्माण काम आरंभ करें। अतः उन्होंने परमेश्वर का भय माना और मंदिर के पुनः निर्माण का काम आरंभ कर दिया। इसी समय झोपड़ियों का पर्व आया तो वे अति हर्षों से पर्व मनाने लगे, परंतु वृद्ध जन जिन्होंने सुलेमान का मंदिर अपने बचपन में देखा था, इस मंदिर को देखकर विलाप करने लगे। तो परमेश्वर ने उनसे कहा, हियाव बांधकर काम करो, मैं हूं, मैं इस भवन को फिर महिमा से भर दूंगा। यह परमेश्वर का उत्साह था उन लोगों के लिए। तो मेरे प्रियो, आइए हम अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और आज हगै नबी की पुस्तक 2:4 को पढ़ेंगे। हगै 2:4 में लिखा हुआ है, तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हेरे जरुबाबेल, हिया बांध और हे यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक, हिया बांध और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों, हिया बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर की चुनौती दो गुना है। पहले वह कहता है, हे जरुबाबेल, हिया बांध। उसने उसे 3 हिया बांधने को कहा। तदुपरांत वह प्रजा से कहता है, हे देश के सब लोगों, हिया बांधकर काम करो। यह कोई नई आज्ञा या नई बात नहीं थी, वही सरल सी बात, परंतु अत्यधिक महत्वपूर्ण बात। मेरे मित्रों, हम एक अनर्थकारी संसार में रहते हैं, परंतु परमेश्वर का काम कहीं कहीं फल नहीं रहा है। क्यों? इसका समाधान क्या है? देखिए, इफिसियों की पत्री 6:10 में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। जी हां, हमें यह बोध होना है कि हम कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर ही है जो सब कुछ कर सकता है। प्रभु में बलवंत बनो, यह कैसा अद्भुत प्रोत्साहन है। इब्रानियों की पत्री 11:34 में विश्वासियों के बारे में लिखा है, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। लिखा है कि परमेश्वर ने दुर्बलों को चुना है। कंगूरे वाले बड़े बड़े आराधनालय खाली पड़े हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे छोटे से आराधनालय भरे रहते हैं, वरन वहां दो या तीन आराधनालय होती हैं। मैंने देश के कई हिस्सों में भ्रमण किया है और यही देखा है जो सत्य है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में बार बार कहा गया है कि हमें प्रभु में बलवंत होना है। पौलुस एक युवा प्रचारक तिमोथियुस को लिखता है, दूसरा तिमोथियुस की पत्री 2 अध्याय उसके 1 पद में वह कहता है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। जी हां, तिमोथियुस को लिखे दूसरे पत्र में पौलुस अपने विश्वास के पुत्र को अंतिम संदेश देता है, कहता है, तू परमेश्वर की संतान है, अतः बलवंत हो जा। यह कैसा महान प्रोत्साहन का वचन है। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी यही कहता है कि प्रभु में बलवंत हो जा। मेरे मित्रों, क्या आज आप प्रभु में बलवंत हैं? क्या आप उसकी ओर बलवंत होते जा रहे हैं या आप स्थिर हैं? आपको इसकी कोई चिंता नहीं हो रही है? यहां पर परमेश्वर का दास कहता है कि हमें प्रभु में बलवंत होना है, तभी सब काम सफल होगा। आगे हम देखते हैं, अब कोई कहे, मेरी सेवा तो लगभग अमान्य है और मेरा समूह भी बहुत ही छोटा है। मेरे मित्रों, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो यह शैतान है जो आपके मन में विचार उत्पन्न कर रहा है। उसकी बात आप ना माने। परमेश्वर निर्धारित करता है कि क्या बड़ा है और क्या छोटा है। आज घास का निर्माण हो रहा है और वह बड़ा ही प्रभावशाली दिखाई देता है, परंतु परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि आकार का कोई महत्व नहीं है। आगे हम देखते हैं, परमेश्वर हमसे कहता है, 1 कुरिन्थियों की पत्री 16 अध्याय के 13 पद में, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। जी हां, कुरिन्थ नगर के विश्वासी विश्वास में विकास नहीं कर पा रहे थे, अतः पौलुस ने उन्हें ये वचन लिखे थे, प्रभु में बलवंत हो। ओह, आज प्रभु की सेवा में हमें इसकी कैसी महान आवश्यकता है। पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को दूसरा पत्र भी लिखा जिसमें उसने उनसे आग्रह किया, 2 कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय उसके 4 पद में, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। मेरे मित्रों, मैं एक ऐसी कलीसिया में सेवा के लिए गया हुआ था जहां मुझसे पहले परमेश्वर के महान सेवक रह चुके थे। मैं प्रचार मंच पर चढ़ते समय यही कहता था, हे प्रभु, मैं अयोग्य हूं, मुझ में क्षमता नहीं, मैं तुझे पुकारता हूं। वह हमारी निर्बलता को सामर्थ्य में बदल देता है। हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं है, गढ़ों को ढा देने के लिए वे परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। मैंने अनेक बार परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, यदि आज यहां कुछ होता है तो वह तुझे ही करना होगा, क्योंकि तू जानता है और मैं भी जानता हूं कि यह अकिंचन मनुष्य युवक कुछ भी नहीं कर सकता है। और तब मैंने परमेश्वर को कार्य को होते हुए देखा है। 2 कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय उसके 5 और 6 पद में पौलुस कहता है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके परमेश्वर का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करे। मेरे मित्रों, दूसरे शब्दों में सुनिश्चित करें कि आप परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं। काम बड़ा हो या छोटा, हमें स्मरण रखने की आवश्यकता है कि हम प्रभु में बलवंत हों। परमेश्वर ने इसराइल से कहा, निश्चय ही यह मंदिर पहले जैसा प्रभावशाली नहीं है और मैं भी जानता हूं, परंतु बलवंत हो जाओ। यह मेरी चुनौती है। परमेश्वर ने 3 बार कहा है, बलवंत हो जाओ। परमेश्वर की दूसरी चुनौती थी, काम करो। परमेश्वर निश्चित करेगा कि किसका काम बड़ा है, कौन महान है। मार्टिन लूथर, जॉन वेस्ली, विली संडे, विली ग्राहम आदि सब का न्याय किया जाएगा। मैं अपनी कलीसिया में सदैव ही कहा करता था कि जब हम स्वर्ग में प्रभु के समक्ष उपस्थित होंगे, तब वह एक महिला को सामने बुलाकर हमसे पूछेगा कि क्या हम उसे जानते हैं, और हम कहेंगे नहीं। तब परमेश्वर कहेगा, यह पुत्री सबसे अधिक सम्मान के योग्य है। इसने बड़ी बड़ी सभाएं कभी नहीं की, परंतु पति के न रहने पर भी अपने पुत्र को प्रभु की सेवा के लिए ऐसे तैयार किया कि उसने प्रभु की सेवा में महान कार्य करके दिखाया। बस प्रभु यही देखता है। मेरे मित्रों, उस दिन हमारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे। वह कहता है, या बांधकर काम करो। आज आपके पास समय है कि आप या बांधकर काम करें, इससे पहले कि आपको उस दिन को देखना पड़े जहां आप न्याय के लिए खड़े हैं। परमेश्वर का महान उत्साहवर्धक वचन है, मैं तुम्हारे संग हूं। आप जब परमेश्वर के लिए काम करते हैं, निश्चय जाने कि वह आपके संग है। मेरे विचार में परमेश्वर की महिमा अर्थात शकीना बेबीलोन द्वारा सुलेमान के मंदिर के नष्ट किए जाने से 125 वर्ष पूर्व ही मंदिर से प्रस्थान कर चुकी थी। अतः इन वृद्धों ने अपने बाल्यकाल में जो कुछ देखा था वह केवल भवन की बाहरी महिमा थी। आज उस मंदिर के स्थान पर अन्य जातियों का बना हुआ एक धर्मस्थल है जिसका गुम्मट सोने से मढ़ा हुआ है, और मैंने उस हर एक दिशा को जो वहां पर है देखा है। वह अति सुंदर दिखाई देता है। उसे देखकर मैं सोचने लगा कि सुलेमान का मंदिर जो सोने से सुसज्जित था वह कैसा चमकता होगा, कैसा आकर्षक दिखता होगा। अतः इस मंदिर में और सुलेमान के मंदिर में तुलना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। परमेश्वर ने जरुबाबेल के मंदिर को 3 स्तरों में देखा, सुलेमान का मंदिर, जरुबाबेल का मंदिर और हेरोदेश द्वारा निर्मित मंदिर जिसमें प्रभु यीशु आराधना करता था। प्रभु यीशु शकीना महिमा था। यूहन्ना कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 14 पद में, हमने उसकी महिमा देखी, परंतु वह मानवीय देह में थी। प्रभु यीशु अनेक बार मंदिर में गया था। परमेश्वर उनसे कहता है, यह मंदिर वैभवशाली नहीं है, परंतु मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे मित्रों, यह एक महान मंदिर से अच्छा है जहां परमेश्वर नहीं है। ऐसी आराधनालय हैं, जी हां, बड़े बड़े आराधनालय खाली पड़े हैं, और कहीं एक कोने में छोटा सा आराधनालय आराधकों से भरा है जिसमें एक सच्चा प्रचारक परमेश्वर का वचन सुनाता है। अतः हमें सत्य और असत्य का उचित परिप्रेक्ष्य अंतर्ग्रहण करना आवश्यक है। परमेश्वर किसे आशीष दे रहा है और किसे नहीं दे रहा है। मुझे और आपको देखने की आवश्यकता है, जांचने और परखने की आवश्यकता है। हगै 2 अध्याय उसके 5 पद में आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, कहता है तुम मत डरो। यद्यपि यह नई इमारत प्रभावशाली नहीं थी, परमेश्वर ने उन्हें विश्वास दिलाया कि मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। यह उस महान वैभवशाली मंदिर से अधिक अच्छा है जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति ना हो। यदि आपके पास बड़ा मंदिर है, भव्य मंदिर है, सुंदर है और उसमें परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो वह किसी काम का नहीं है। यहां पुराने नियम और नए नियम में पवित्र आत्मा के काम में अंतर है। उस युग में परमेश्वर स्वयं ही अपनी प्रजा के मध्य वास करता था, आज वह विश्वासियों में वास करता है। हम मसीह यीशु के विश्वासियों का यह एक महान लाभ है। यहां पर कहता है तुम मत डरो। यदि उन्हें नहीं डरना था तो हम परमेश्वर की संतान क्यों डरें? जी हां, आज हम परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन्होंने उसे अपना उद्धारकर्ता मान लिया है वे उसकी संतान बन गए हैं, उसके बेटे और बेटियां बन गए हैं, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे मित्रों, आज हमें इस बात को स्पष्ट करना है कि हमारे इस मंदिर में जिसे आज हम बना रहे हैं, यदि परमेश्वर की उपस्थिति वहां नहीं है तो वह किसी काम का नहीं है। कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस भी कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो वह उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। जी हां, हम इस संसार में परमेश्वर के लिए मंदिर बनाते हैं और उसे हम साफ सुथरा रखते हैं ताकि परमेश्वर उसमें वास करे। परंतु हम यहां कुरिन्थियों की पत्री के द्वारा इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर हमारे हाथ के बनाए हुए मंदिर में वास नहीं करता है। वह तो अपने बनाए हुए मंदिर में वास करता है और वह मंदिर है आप, वह मंदिर है मैं, अर्थात हम सब परमेश्वर के द्वारा बनाए गए मंदिर हैं और उसकी आत्मा हम में वास करती है। और यही कारण है कि वह कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। यदि हम इस मंदिर को जिसे परमेश्वर का आत्मा जिसमें रहता है नाश करते हैं किसी भी रीति से, गलत कार्यों के द्वारा, बुराइयों के द्वारा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह उसे नाश करेगा। आज यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम किस प्रकार की आराधनालय में जाते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आज हम परमेश्वर के मंदिर को किस प्रकार से रखते हैं, अर्थात अपने इस शरीर में जिसमें आत्मा वास करती है। मेरे मित्रों, इसराइलियों ने उस भव्य मंदिर को देखा जिसे सुलेमान ने बनाया था और उसके पश्चात नए मंदिर को भी देखा और दोनों मंदिरों का उन्होंने मूल्यांकन किया और उनकी तुलना की और उस मंदिर को स्मरण किया जिसे सुलेमान ने बनाया था, और उस कारण वे बहुत निराश हुए क्योंकि यह मंदिर उनके सामने कुछ भी नहीं था और वे रोने लगे। आज हमारे जीवन में बात यह है कि हमारा जीवन पुराना मनुष्यत्व, पाप का जीवन और परमेश्वर को पाए हुए जीवन अर्थात नया जीवन किस रीति से परमेश्वर के सम्मुख में है। इस मंदिर को देख करके मुझे और हमारे लोगों को आनंदित होना चाहिए। लोग कहने पाए कि ये भाई ये बहन पहले कैसे थी, लेकिन अभी देखो इसका जीवन कितना अच्छा है, इसके जीवन में सुधार आ गया है। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे यही कहता है कि तुम मत डरो। परमेश्वर में जीवन जीने के लिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उसकी संतान हैं। बस आपको चाहिए कि आप उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसके भय में जीवन जिए और उन आशीषों को प्राप्त करें जिसे उसने आपके लिए रख छोड़ा है। इसराइली बार बार परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करते थे और यही कारण है कि उनके जीवन में विपत्तियां आती थी, परंतु जब जब उन्होंने अपने मनों को फिराया, परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। मैं यह नहीं कहता कि आप बार बार पाप करें, परंतु मैं आपसे ये कहता हूं कि प्रभु को जानें, अपने जीवन से पाप को दूर करें और उस मंदिर को जिसे परमेश्वर ने आपको दिया है, जिसमें परमेश्वर की आत्मा रहती है, पवित्रता के साथ नम्रता के साथ उसको बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन से बड़े बड़े कामों को करना चाहता है। क्या आज आप तैयार हैं? क्या आज आप इस मंदिर को परमेश्वर के लिए उसके रहने का स्थान बनाने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो आज ही आप निर्णय लें, परमेश्वर से कहें कि प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस मंदिर में आ जाइए, इसमें वास कीजिए और मुझे चलाइए। मैं आप में बढ़ना चाहता हूं, मैं आपकी वाणी को सुनना चाहता हूं कि तुम मत डरो। हाँ प्रभु, आप हमारी सहायता करें। मेरे मित्रों, यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। आप एक सही निर्णय को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
ऊपर बनाया अंबर, नीचे बनाइए जमीन, लटकाए बिना सहारे चांद तारे, कहीं रोशनी से अपने रोशन कर दिया, जहां मिट्टी उठा कर हमने बनाया एक नया इंसान। ऐसा गोताखोर नहीं जो नाप सके प्रभु की गहराई, ऐसा गिरिया नाप सके प्रभु की ऊंचाई।